أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو کا موضوع و محور شہید مطہری کی کتاب سیرت آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس میں جو پہلا عنوان شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ مشکلات امام علی علیہ السلام ہے۔ پچھلے درس میں دو مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو امام علی علیہ السلام کو اپنے زمانے میں پیش آئیں۔ تیسری مشکل کے جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں اور سیاست کے اندر سچائی اور انتہائی واضح اور صریح بات کرتے تھے۔ یہ ایک انتہا درجے کی اچھی صفت ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ صادقین وہ لوگ ہیں کہ جن سے خداوند متعال راضی ہے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہاں پر مشکل کے طور پر جو ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے مقابل میں جو سیاست چل رہی تھی وہ معاویہ کی سیاست تھی۔ معاویہ کی سیاست ہیلے، بہانے، فریب، جھوٹ کے اوپر مشتمل تھی۔ یعنی معاویہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر اس وسیلے سے استفادہ کرتا تھا کہ جو اس کو ہدف تک پہنچا دے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف ہو، خدا اس وسیلے کے استعمال پر راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ معاویہ کی حکومت میں یہ سیاست رائج تھی۔ جب علی علیہ السلام حکومت میں آئے، حاکم بنے، تو انہوں نے عدل الہی کو قائم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اپنی طرف سے 100% کوشش کی کہ عدل الہی کو اجرا کیا جائے، قرآن اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق حکومت کو چلایا جائے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام ہر اس راستے سے، ہر اس وسیلے سے اجتناب کرتے تھے کہ جو قرآن اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے مخالف ہو۔ لہٰذا جب امام حکومت کے اجرا کے اندر اس روش پر چلنے لگے کہ جس میں صداقت تھی، جس میں سچائی تھی، جس میں صراحت تھی، جس میں صحیح وسیلے کا استعمال تھا، تو ظاہری سی بات ہے کہ مشکلات انسان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ دشمن جھوٹ سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو متدین ہوتا ہے، جو عادل ہوتا ہے، وہ جھوٹ سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ جھوٹ کے ذریعے پراپوگنڈے کھڑے کرتا تھا، پراپوگنڈے کرتا تھا، اور سادہ لو انسان اس کے پراپوگنڈے کے اندر آ جاتے، لیکن امام علی علیہ السلام اس کا مقابلہ شرعی وسیلوں کے ذریعے کرتے تھے۔ لہٰذا یہ تھوڑا مشکل ساز بنا امام علی علیہ السلام کے لیے کہ چونکہ عوام بے بصیرت تھی، وہ जल्दी हीलों में आ जाती थी, जल्दी फरेब में आ जाती थी। इमाम अली जब सराहत से गुफ्तगू करते थे, हकायक को रोशन करते थे, तो वो बात या तो उनको समझ में ना आती, या वो ये समझते कि इस तरीके से गुफ्तगू करना, इस तरीके से प्लान बनाना, इस तरीके से इजरा करना हुकूमत को फ़ेलन अभी हमारे हक़ में नहीं है, मसलहत ये नहीं है। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम को आकर कहते भी थे कि इमाम आप थोड़ा नर्म हाथ रखें, नरमी करें, और हर जगह पर इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार न करें। सरीह और वाज़े और रोशन मौक़िफ़ इख्तियार ना करें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने हकीकी और शरई और दुरुस्त मौक़िफ़ पर डटे रहते थे। हत्ता बाज़ों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि सियासत असलन इमाम अली अलैहिस्सलाम को करना ही नहीं आती, सियासत असलन मुआविया को पता है। तो जब ये बातें इमाम अली अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो इमाम ने यूं इरशाद फरमाया, नहजुल बलागा में इस तरीके से एक खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहे मा मुआविया तो बेअदहा मिन्नी, खुदा की कसम मुआविया मुझसे ज्यादा ज़हीन नहीं है, वलाकिन्नहु यग़दिरु व यफ़जुर, लेकिन मुआविया ये फरेबकार है, धोखा देता है और फाजिर है, फासिक है, वलौला कराहियतुल ग़द्र लकुंतु मिन अधन नास, अगर फरेबकारी शरीयत के अंदर मकरू ना होती, यानी खुदावंदे मुताल उसको नापसंद ना करता, इससे मना ना करता, तो मैं सबसे ज़्यादा चालाक होता लोगों में और मुआविया से ज़्यादा चालाक होता। लेकिन क्या करें, शरीयत ने इस हीले से, इस रविश से मना किया है, तो लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ये फरमाना चाहते हैं कि मैं कभी भी फरेबकारी से काम नहीं लूँगा। इस वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम को। और ये फ़क़त इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं है, जो भी हुकूमत अलवी के रास्ते पर चलेगा, अदल इलाही को कायम करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा उसको यही मुश्किल दरपेश होगी कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने में पेश आई। ये एक मुश्किल थी कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने में पेश आई थी। चौथी मुश्किल के जो शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब में बयान फरमाते हैं, और ये असासी तरीन मुश्किल थी, बुनियादी तरीन मुश्किल थी इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए, और वो है खवारिज। अगर आप मुकायसा करें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही के ज़माने का और इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के ज़माने का, तो एक फ़र्क नज़र आता है। पैगंबर जब इस्लाम को बयान कर रहे थे, हकाइक की तबयीन कर रहे थे और दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग करते थे, तो उस वक्त उनके मुकाबिल में जो दुश्मन था वो वाज़ेह और रोशन तौर पर काफिर था, उनके कुफ्र के अंदर किसी को भी शक नहीं था। तमाम मुसलमान अपने दुश्मन को पहचानते थे, कुफार से आशनाई थी, सबको पता था कि हमने इनसे लड़ना है, और वो अपने अकीदे के ज़रिए, अपनी शुजाअत के ज़रिए दुश्मन से मुकाबला करते थे। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के अगर ज़माने को देखा जाए, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में जितने भी आए वो ज़ाहिरी तौर पर इंतहा दर्जे के आबिद, ज़ाहिद, नेक, नमाज़ शब के पाबंद। खुलासा ये कि उन्होंने इस्लाम और तदय्युन का लिबादा पहना हुआ था, मुसलमान थे वो, लेकिन अपने दिलों में निफाक रखते थे। मसलन मुआविया को आप देख लें, मुआविया नमाज पढ़ता था, मुआविया तमाम इस्लामी आदाब का ख्याल रखने की कोशिश करता था, और अक्सर जो मुसलमान थे वो उसको मुस्लिम के तौर पर जानते थे। लेकिन हकीकत में आप तारीख का मुताला करके देखें तो कितने ऐसे मवारिद मिलेंगे कि जहां पर मुआविया ने सरीहन इस्लाम की मुखालफत की है। ये सरीहन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं और हमें ये पता चल गया कि मुआविया मुनाफिकाना रविश पर चल रहा था, तो इस एतबार से सरीहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारे लिए वाज़ह और रोशन है कि जो फ़ेल वो अंजाम दे रहा था वो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ था। लेकिन उस ज़माने में लोगों के लिए वाज़े और रोशन नहीं था, तो लिहाजा उसकी इत्तेबा भी करते थे, और ख़ुसूसन वो लोग के जो शाम के अंदर रहते थे उनके लिए तो असलन वाज़े नहीं था। जो भी वो खलवत के अंदर जो गलतियां करता था, कुरान की मुखालफत करना, या इस किस्म की और भी बहुत सारी चीज़ें जो तारीख़ में मिलती हैं और अहले सुन्नत के जय्यद उलमा ने इन बातों को अपनी किताबों में लिखा है। बहरहाल अली अलैहिस्सलाम का ज़माना ऐसा है कि जहाँ पर मुकाबिल में जो जंग करने के लिए आए वो मुसलमान हैं, और पैगंबर अकरम के मुकाबिल में जो दुश्मन था, जो मुखालिफ था, वो सरीहन काफिर था। लिहाजा पैगंबर के दौर में जंग करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि दुश्मन वाज़े और रोशन था, दुश्मन को पहचानना मुश्किल नहीं था। लिहाजा जंग भी मुसलमानों ने इंतहाई शुजाअत के साथ लड़ी और कामयाबियां हासिल की। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में जंग का तरीकाकार कुछ और था। यहां पर दुश्मन की पहचान नहीं थी, यहां पर दुश्मन को पहचानने के लिए जाहिरी और सतही तौर का इल्म काफी नहीं था। अगर सतही एतबार से देखें तो नमाज शब के पाबंद लोग मौजूद थे कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए, कि जो इमाम आदिल थे, जो इमाम बरहक थे, जो शरई तौर पर इमाम थे, और खलीफा भी अगर बनाया गया उनको तब भी वो आईन और कानून के मुताबिक था। तो लिहाजा इन ऐसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खास किस्म की बसीरत का होना ज़रूरी होता है। अगर वो बसीरत ना हो तो कभी भी दुश्मन को पहचाना नहीं जा सकता, और जब दुश्मन पहचान में ना आए तो नतीजा निकलता है कि इंसान वो जंग, वो मैदान हार जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में यही मुश्किल मौजूद थी। मुआविया फरेबकार था, मुआविया फरेबकारी से काम लेता था, प्रोपोगंडे से काम लेता था, और अपने ऊपर इस्लाम का लिबादा पहना हुआ था। इसी तरीके से जो मुआविया के साथ काम कर रहे थे उनका भी यही सूरत हाल थी। जब जंगे सिफीन हुई तो जंगे सिफीन के अंदर जब मुआविया ने ये देखा कि अभी जंग हम हारने वाले हैं, हत्ता मुआविया को यकीन हो गया कि मैं मारा जाऊंगा, तो उसने एक चाल चली। وہ یہ کہ قرآنوں کو نیزے پہ اٹھا دیا، قرآن کو نیزے پہ اٹھا دیا اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا قرآن ہے، قرآن کے ذریعے آ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ تھا کہ جو معاویہ کی اس سیاست کو نہ سمجھ سکا اور امام کے مقابل میں آ گئے اور امام سے کہنے لگے ہم قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو یہیں پر ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں اس کی مزید تفصیل پیش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔